ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हो गए। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रुनेई यात्रा है। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ तथा बड़े आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो वे सुल्तान हसन अल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि वे ब्रुनेई से कल सिंगापुर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति आज दोपहर मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी। वे उच्च सदन की आवश्यकता और महत्व पर एक पुस्तक का विमोचन भी करेंगी। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर हैं। भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2023 संस्करण में 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने बताया कि भारत देशों के समूह का एक हिस्सा है जो GII रैंकिंग में पिछले दशक में तेजी से आगे बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले दशक में नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का लगातार 13वें वर्ष नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड जारी है। वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह अभियान एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरूआत की थी। हरियाणा के जींद जिले में श्रद्धालुओं को ले जा रहे वाहन से एक ट्रक की टक्कर हो जाने के बाद कम से कम 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना नरवाणा के निकट हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आधी रात्रि के बाद हुई। पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज सूरत और भरूच जिले के लिए अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर आंध्र प्रदेश में NTR और गुंटूर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश में कमी आई है, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश जारी है। तेज वर्षा के कारण खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यापेट जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया दल राहत गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा मिस्र सीमा पर फिलाडेल्फी गलियारा में इसराइली रक्षा बल तैनात रखना इसराइल की रणनीतिक आवश्यकता और अनिवार्यता है। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि फिलाडेल्फी गलियारा से हमास को हथियारों की आपूर्ति की जा रही थी। इस बीच हजारों लोग देशभर में रैलियां और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों के 6ठे दिन आज टीम इंडिया निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने का प्रयास करेगी। निशानेबाजी में अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल महिलाओं की 50 मीटर SH1 श्रेणी के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। तीरंदाजी में पूजा महिलाओं की रिकर्व प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगी। भाग्यश्री जाधव महिलाओं के शॉटपुट F34 के फाइनल में पदक के लिए खेलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में महिला सिंगल्स SH6 श्रेणी में नित्या श्रेय सिवन को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।